आगे चलते हैं। दो तरह की माफ़ी होती है, एक होती है जो हम अल्लाह के हकूक़ में कमी कर चुके हैं, हकूकुल्लाह में माफ़ी, और दूसरी है बंदों के मामले में। दोनों का फ़र्क समझिए, तभी इंशाल्लाह ये मौजू किसी हद तक हम पूरा समझ सकेंगे। जो मामले हैं अल्लाह के मामले में, अल्लाह ने उसके लिए रखे हैं फरिश्ते। वल मलाइका तो युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वयस्तग़फिरून लिमन फिल अर्दी अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी बयान करते हैं तारीफ़ के साथ, और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही माफ़ फरमाने वाला और रहमत वाला है। क्या पता चला कि कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं जो अल्लाह के मामले में बंदों से तकसीरें हो जाती हैं ना, जो कमियां बेशियां होती हैं, वो उनके लिए माफ़ियाँ मांगते रहते हैं। याद रखिए, लिख लीजिए, इंसानी मामलात की नहीं माफ़ियाँ वो मंगवा सकते जब तक बंदे ना माफ़ कर दें, बल्कि अल्लाह के मामलों में कोई कमी बेशी हर एक से बहुत सी होती हैं। अल्लाह का मामला, अल्लाह ने अपनी एक खुफिया फोर्स आपकी मेरी माफ़ियों के लिए मुकर्रर की हुई है, हत्ता के अर्श के उठाने वाले फरिश्ते माफ़ियाँ आपके लिए मांगते हैं, आप भी मांगिए। अल्लाह से माफ़ी मांगने का तो बड़ा ही आसान तरीका है, जब आपके दिल में ये गिल्ट आने लगे कि मैंने कुछ गलत किया, फौरन जिस बंदे से कोई मामला बिगड़ा उससे जाके कहें सॉरी, आई वॉन्ट टू से यू सॉरी। रात ना गुजारने दीजिए शौहर से झगड़े और लड़ाई के साथ सोने में, वो मुंह पलट कर सो गए, आप गुस्से में बोली, वो भी चले गए, कुछ बर्तन टूटे, हो गया इल्ला मा कद सलफ, अब नहीं सोना जब तक माफी ना मांगे। प्लीज सॉरी, शौहर भी बोले, अना मत बनाइए। देखिए, लोगों के जमीर को बेदार कीजिए, उनकी अना को बेदार ना कीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के साथ जो मामले बिगड़ते हैं उसके लिए है तत्तजाफ़ा जुनूबहु अनिल मदाजी। वो फरिश्ते तो मांग ही रहे हैं, आप रात की घड़ियों में चुपके चुपके उठिए, बिस्तर छोड़िए, वुजू कीजिए और जाकर जाए नमाज पे खड़े हो जाएं। यकीन करें, अल्लाह अकबर कहते ही आपके आंसू निकल पड़ेंगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। जैसे माँ से बात हो ना बहुत दिन बाद, या कोई गड़बड़ हुई और उसके बाद बात हो या आमना सामना हो, तो मिलते ही आंसू निकल आते हैं। अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने का वक्त रात का है कि अल्लाह मैंने क्या किया, अल्लाह जी मुझसे क्या हो गया। फिर आप रोएं, फिर धोएं, फिर वादे करें, फिर प्यार करें, फिर लाड करें, अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि आपके गिल्ट को दूर करेगा, बल्कि अल्लाह ताला तो आपको और भी ज़्यादा देगा। और यकीन कीजिए कि तौबा का दरख्त नदामत की ज़मीन पे उगता है। हम तो पलटने वाले को ताने देते हैं ना, अल्लाह तो उनका रास्ता देखता है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जिस तरह सहरा में खोए हुए ऊँट के मिलने पर जो शख्स की ज़ुबान से निकलता है ना खुशी के मारे कि यार अब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, हालांकि ये जुमला कोई बोल दे तो वो फिरौन कहलाए या ना रब को लाला कहते हुए, लेकिन अल्लाह को पता है बंदे की ज़ुबान से क्या निकल जाता है और क्या वो इरादे से कहता है। अल्लाह तो उसके ऊपर खुश हो रहा, तौबा करके हम तो अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, लेकिन लोग ताने देते हैं। ये जो कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली गई फलां, क्या पहली बात है 900 चूहे खाए, किसने गिने, और क्या बिल्लियां हज करेंगी, ये मजाक है दीन के रिचुअल का, ऐसे मुहावरे मत बोला करें, मत ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया करें। लेकिन अगर लोग ये कहते हैं ना कि जी अच्छा जी ये तो इतनी गलतियां करके आए, बस लोग कहते हैं किस मुंह से जाएं, अल्लाह तेरे दर पे जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, नमाज पढ़ूं तो किस मुंह से पढ़ूं, ये तो मुंह तुझे दिखाने के काबिल नहीं, तो अल्लाह भी तो फिर यही कहता होगा ना कि मैंने कब कहा कि तुम नेकियां लेकर आओ, मैंने कब कहा कि तुम नमाज रोजे लेकर आओ, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम नदामत भरा दिल लेकर आओ, शर्मिंदगी वाला दिल लेकर आओ, टूटे हुए आओ। आप जितना टूटेंगे अल्लाह आपको उतना नया जोड़ लेगा, आपकी ऐसी प्यारी तस्वीर अल्लाह बना देगा, पहले से भी खूबसूरत हो जाएंगे। लोगों को तो वहम नहीं कभी आएगा कि आपसे कभी गुनाह भी हुआ था, इसीलिए तो कहा कि दूसरों को अपने गुनाह ना बताया करो, क्योंकि अल्लाह तो भुला देता है, बंदे नहीं भूलने देते, अल्लाह ताने नहीं देता। अल्लाह तो कहता है कि जितना बड़ा गुनाह वाला दिल लेकर कोई आएगा, मैं उतनी अपनी रहमत की चादर लेके आऊँगा, क्योंकि रहमत होती तब है जब हिसाब नहीं होता। देखिए, अल्लाह ताला से जब आप अदल मांगते हैं और उसका इंसाफ मांग लेते हैं ना, तो फिर तो हिसाब शुरू होता है। अल्लाह की रहमत का ताल्लुक हिसाब से नहीं है, आपको अल्लाह कह दे तेरा हिसाब लिए बगैर मैंने तुझे माफ़ कर दिया, फिर बचेंगे, तो लिहाजा अल्लाह से तो बड़ा आसान है मामला। इसके लिए आपको रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना, आपको इसके लिए ताक रातों का इंतज़ार नहीं करना, 15 शाबान का या शबे बिरात के नाम पर, या कोई मेराज की रात का इंतज़ार नहीं करना, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो ही गुनाह हो जाके सर रख दीजिए अल्लाह के सामने, जैसे छोटे छोटे बच्चे माओ के आगे चलते हैं, बच्चे बहुत जल्दी अल्लाह को मनाने की तरह अपने माँ बाप को भी मना लेते हैं, लाड करेंगे, जब तक माँ माफ़ ना कर दे बच्चा मुंह में जुबान नहीं डालता। मामला बिगड़ता है इंसानी मामलात में, और यहाँ इसको थोड़ा सा समझिए कि जब हमारे दूसरों से मामले बिगड़े हों तो हम क्या करें। तो उसकी दलील तो पहले कुरान में सूरह जासिया की आयत 14 को ले लीजिए, قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों की यानी जो अमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं, हिसाब किताब या दुनिया के जो अजाब आए कौमों के ऊपर, वो भी तो उनके अजाबों ही की जजा या सजा थी ना, तो फरमाया जो लोग अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते इनसे दरगुजर करें ताकि वो इन लोगों को इनके बदले इनके अमाल का बदला दे। क्या पता चला कि जब बंदों के मामले में कोई कमी बेशी हो ना तो फौरन दरगुजर कीजिए, आपस में मामला नबेट लीजिए, बात बाहर ना जाने दीजिए। देखिए ना भाई भाई का मामला, आपस में लेन देन को बराबर कर लें, लाइन फेर लें, चलो जी पिछली ख़त्म अगली पे बात करते हैं, कुछ मैंने अपने नाम डाल लिया कुछ आप डाल लीजिए, फॉर की फॉरगेट। किसी को क्या ज़रूरत है कि किसी मामू चचा फूफा को डाले। दो भाई आपस में बैठ जाएं तो यग़फ़िरू एक दूसरे के ऊपर कलमे अफ़्फ़ डाल दीजिए। इसकी वजह क्या है कि इसके बाद बात बाहर नहीं जाएगी। शोहर बीवी आप यकीन कीजिए शादीशुदा जिंदगी के असूल मुरतब कर लीजिए, कुछ झगड़े खत्म होंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ वही है शोहर आपके और वही है बीवी। मसलन आप 20 केसेस ले, हमारे से पास इश्यूज आते हैं और भी बहुत सारों के पास जाते होंगे, हम तो सिर्फ एक खुदा खौफी के साथ इस मामले में कुछ मदद कर देते हैं कि अगर ये भी कोई स्किल है किसी के पास तो दूसरों के घर बच जाए। 90% कपल यानी अगर शोहर कह रहे तो शोहर बीवी या बीवी या दोनों ही, 90% शोहर एक दूसरे की बुराई करेंगे, खामियां गिनाएंगे, एक जुमला पूछने पे सारे ऐप खोल देंगे चाहे आप उनके लिए एक बिल्कुल अजनबी या स्ट्रेंजर हो। लेकिन जब आप उनसे ये कहें ना कि ओके सिस्टर अगर आपको लगता है कि आपके शोहर इतने ही ख़राब हैं तो तलाक लेनी है, तो 99% सिस्टर्स कहती हैं नो। और यही बात कुछ मर्दों की है, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है, चूँकि वो मेरे माँ बाप ने किया हुआ रिश्ता मैं तोड़ना नहीं चाहता। तो ना छोड़ना चाहते हैं आप ना रखना चाहते हैं, तो जिस बर्तन में खाना है उसको ठकुरते नहीं है, फिर क्यों ना थोड़ा सा अपने आप को सेट करें। बस उसमें एक टिप सिर्फ आज देती हूँ, 99 टिप्स फिर कभी दे सकती हूँ। अपने स्पाउस को बदलने का इरादा छोड़ दीजिए, यानी उसको वैसे भी नहीं ना बदल कर सकते, यानी उसको छोड़ के कोई नया नहीं ले सकते ना, इस तब्दील जौजन गैरा जौजहा नहीं करना चाहते ना। अब आप ये भी छोड़ दें कि आपके हस्बैंड बदलेंगे, लिख लीजिए दिल पे मैं अपने शोहर को नहीं बदल सकती, और शोहर बीवी को कह दे मैं इसको नहीं बदल सकती, तो घर बचाना है ना तो फिर मुझे ही बदलना होगा। तो ये एक छोटा सा लतीफ सा नुक्ता है इस बात का कि अपने इंसानी मामलात में ले दे कर लीजिए, कुछ हकूक छोड़ दीजिए। जैसे हजरत सौदा से मुतल्लिक सूरत निसा 4 पारे की आखिरी आयतों के बीच में आता है कि अगर मर्द की तरफ से नशूस का डर है तो बीवी कुछ हकूक छोड़ दे, शोहर भी कुछ छोड़ दे, बीवी भी कुछ हकूक छोड़ दे। और याद रखिए बच्चों को तो कभी थर्ड पार्टी ना बनाए। बाज़ माएँ बच्चों को सामने लाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उन्हीं की मोहब्बतें और उन्हीं की नफ़रतें ऐसी बढ़ती हैं कि फिर वो एक तीसरा केस बन जाता है। तो बहरहाल इतनी बात का खुलासा कर देती हूँ कि ज़िंदगी के मामलात में जहाँ रिश्तेदारों से घर वालों से मामला पड़े इसी हद तक रखिए। अभी मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि इश्यूज ज़्यादा हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जाकर हम एक और एंगल भी देखेंगे कि जब हम दीन के नाम पर निकलते हैं और उधर भी तो फिर मामला चलते हैं ना, जैसे भाई बहनों से हर वक्त बातचीत चलती है इसी तरह दीनी मामलात में भी हम आगे चलते हैं, उसका क्या सलूशन है वो आगे जाएगी बात। अभी हम रहते हैं कॉमन लोगों तक, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहे, सारी खवातीन जॉब भी नहीं कर रही, जैसे कुलीग्स सारे लोग ऑफिस में नहीं करते, हाँ मर्दों के साथ हैं, तो वो इशू हम बाद में छेड़ेंगे। अभी सिर्फ हम वो बात लेते हैं कि जो अमूमियत पे क्यास करती है, बच्चे मियाँ बीवी घर फैमिली ससुराल मामू चचा कजन्स फूफियाँ वगैरह, इसमें हमेशा अपने लिए एक असूल बनाइए कि दूसरों की तकलीफ़ों और दूसरों के जुमले, जिसको अक्सर खवातीन क्या कहती हैं आग लग गई सर से पांव तक आग लग गई, भी क्या हुआ आप तो बड़े शौक से शादी में गई थी ये वापस क्यों आई, ऐसे वो वहाँ मिल गई थी बोला ऐसा जुमला उन्होंने बोला फिर मैंने तो खाना भी नहीं खाया और मेरे तब सर में दर्द है और मुझे तो टेबलेट चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? शोहर बीवी इतने मज़े में बैठे खाना खा रहे हैं, बच्चे भी मियाँ भी बातें चीते, इतने में एकदम आवाज़ आई ज़ोर से बर्तन खड़कने की। अच्छा क्या हुआ? वो कहते पता नहीं इनको क्या बात बुरी लग गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और वो कहते चुप कर जाओ, अगर इससे ज्यादा बोली ना तो मैं ये टेबल भी उल्टा कर दूंगा। ये क्या होता है, इसको समझिए। इसके लिए मुझे आपको पहले हकीकत में समझना पड़ेगा कि माफ़ी यानी फॉरगिवनेस होती क्या, और अभी तक हमारी बात फॉरगिवनेस के ही इर्द गिर्द घूम रही है मोस्टली, तो ज़रा सा नोट कीजिएगा। हमें तभी ये तक नहीं पता कि माफ़ी कहते किसको हैं, तो आज इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी इसकी डेप्थ में ले चलती हूँ लफ्ज़ी वज़ाहत के साथ। पहले देख लीजिए कि व्हाट इज़ फॉरगिवनेस। नंबर एक, नेक नियति से और दिल की खुशी से किसी को माफ़ करना, इसको फॉरगिवनेस कहते हैं। अगर मैं आपको आज एक मौका दूं, जो मैं रात से सोच रही हूँ कई डिफरेंट एंगल से, तो उसमें अभी एक दफ़ा लिखिए इंग्लिश का लफ्ज़, लिखिए फॉर गिवनेस। फॉर के लफ्ज़ को लग कीजिए, है ना, इंग्लिश जबान का एक मुस्तकिल लफ्ज़ फॉर। फॉर तो आपको पता ही, उनके लिए फॉर यू, आपके लिए। आगे लिखिए गिव, इसको गैप के बाद लिखिए गिव। गिव क्या, देना, ठीक है। आगे लफ्ज़ नेस, क्या इंग्लिश का एक पूरा लफ्ज़ है कि नहीं, बिल्कुल है। शेमलेसनेस, और इसी तरह से होपलेसनेस। तो आप देखिए कि फॉर गिव और नेस को अलग कर दीजिए। ये जो है ना फॉर गिव, खाली इतना लफ्ज़ रखिए, अगर आप फॉर मैंने के लिए, गिव मैंने देना, यानी ये देने वाली चीज़ है, दूसरों को से मांगने की नहीं, देने की चीज़ है। यानी दो लफ्ज़ लिख लीजिए इंग्लिश में, इंटेंशनल एंड वॉलंटियरली। वॉलंटियरिंग हमने किया बहुत जगह, दीन के नाम पे मस्जिदों में जाकर बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ जाकर हम खाना दे आते हैं, हम इसको वॉलंटियर कहते हैं। लिखिए फॉरगिवनेस इज़ अ वॉलंटियर थिंग। और वॉलंटियर लफ्ज़ में अगर अरबी का लफ्ज़ बोल दूँ तो बहुत ही अच्छा समझा देंगे आपको इंशाल्लाह। तत्वो कहते हैं इसको, तौन, तोए वाओ आइन इसका रूट होता है। कुरान पाक में भी आता है, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कहा कि तुम आओ खुशी से या नाखुशी। अरब मुल्कों में आप जाएं, स्पेशली सऊदी अरब में, तो मुतवे फिर रहे होते हैं वहाँ, जो अक्सर लोगों के गलत चीज़ों पे उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो मुतवा कहते हैं वॉलंटियर को, खुशी से नेकी करने वाला। तो फॉरगिवनेस में खुशी पाई जाती है। ये डंडे के जोर पे माफ़ कराना, चलो 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 माफ़ी मांगो, चलो शाबाश पाँव पकड़ो, चलो आगे से बच्चियाँ नहीं बोलती, ये नहीं माफ़ी होती। तो नंबर एक, नेक नियति से, और दूसरी बात है दिल की खुशी से किसी को माफ़ करना। तीसरी चीज़ लीजिए जो माफ़ी के कंपोनेंट्स में आती है, और वो क्या है, मनफी जज्बात को छोड़ना पड़ेगा, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। अभी ये पूरे लिख लें तो फिर मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखा देती हूँ कि वाकई फिर हम दूसरों को माफ़ कर चुके होते हैं या पार्शली माफ़ कर चुके होते हैं। तो तीसरी चीज़ आपको आ गई, यानी पहली चीज़ है नेक नियति, दूसरी चीज़ है खुशी से रजाकाराना तौर पे, तीसरी चीज़ है मनफी जज्बात छोड़िए, नेगेटिव फीलिंग्स फिर उसके लिए हटाइए। फोर्थ थिंग, मुफाहमत और सुलझोई, रिकॉन्सिलिएशन। डॉक्टर के पास जाते हैं, जख्म दिखाते हैं, फिर वो उसको साफ करता है, फिर बैंडेज लगाता है, या उससे पहले टांके लगाता है, फिर फाहा लगाकर ऊपर पट्टी लगा देता है, ताकि 2-4 दिन के बाद जब पट्टी खोले तो जख्म रिहैबिट हो चुका हो। सुलह और फॉरगिवनेस में मुफाहमत लाजमी है, और मुफाहमत आप अगर अरबी लफ्ज़ों को भी साथ साथ देखें तो इन्जॉय किया करें, अरबी ज़ुबान कितनी प्यारी है। देखिए फ़हम का लफ्ज़ आप पढ़ते हैं फ़हमुल कुरान, हाँ, फ़हम से मुफाहमत है, बाप मुफाला, एक दूसरे को समझना। लिखिए वन साइडेड थिंग नहीं है माफ़ी, जैसे सी सॉ है ना, एक अगर नीचे हो रहा है तो दूसरा ऊपर आएगा, डेफिनेट। दोनों मिडल हैं तो सीधे खड़े रहेंगे, एक ने ज़रा जोर लगाया तो वो नीचे चला जाएगा, दूसरा अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। मुआफ़ी, फॉरगिवनेस मुफाहमत पे होनी चाहिए। आपकी भी बात सुनी जाए, मेरी भी सुनी जाए, आपकी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड किया जाए, मेरी भी की जाए, फिर उसके बाद एक तीसरा हल और मकसद इसलाह हो। अगली चीज़ देखिए पार्डनिंग, मुआफ़ी में दरगुजर जब तक शामिल ना हो। ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पहले मेरा नतारा करो जी, पहले तो मेरी बात पूरी करें, फिर कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, वी हैव टू लूज समथिंग, वी हैव टू लूज समथिंग। इसके बगैर आप मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर आप लोगों से कहे पहले मेरी ये कमी बताएं, फिर मेरा वो नुकसान पूरा करें, फिर इनके इस जुमले को तोड़ लें, फिर इसको टटोल लें, फिर इसके साथ और उसके साथ, और न जाने फिर कितने लोगों ने अपने बुत बनाए होते हैं अल्लाह की बना। मैं अक्सर लोगों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि आई एम अ टीचर ऑफ ह्यूमन बींग, मेरी किताब इंसान है। मेरी ज़िंदगी में ये बहुत अहम हिस्सा है कि रिश्तेदारों के साथ आप कैसी हैं, साथ काम करने वालों के साथ आप कैसे, यानी मेरा फेवरेट टॉपिक, जैसे आप देखिए दीन की बात करने वालों में किसी का फेवरेट टॉपिक जो होता है वो फिक होती है, और किसी को आप देख सकते हैं कि ग्रामर बड़ी पसंद है, तजवीद बड़ी अच्छी लगती है। मैं अपने ऊपर जब नज़र डालती हूँ ना, तो मेरा टॉपिक इंसान है, गुड रिलेशन, क्योंकि अल्लाह के कुरान का भी बुनियादी टॉपिक इंसान है। अब इंसानों के साथ बिगाड़ के साथ आप मैं दीन के काम करेंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सुबह शौहर से झगड़ा, रात को जाकर शौहर के साथ मुंह मारी, तो क्या मैं इतने सुकून से बात कर सकती हूँ? इस वक्त भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, क्या आप इसका तस्वुर भी कर सकते हैं? अगर मेरे दिल में किसी के लिए ग्रच हो, गुस्सा हो, परेशानी हो, और मैं इस तरीके से परेशान परेशान फिरूँ, क्या मैं आपको कुछ दे सकती हूँ? मुझे तो गम ये पड़ा हुआ है कि अभी इस बात के बाद जंग होनी है, और सुबह वाली लड़ाई के तो अभी असर दिल से गया ही कोई नहीं। तो लिखिएगा, यकीन कीजिए, मैं आपको वो बात कहने लगी हूँ जो मैं अपने लिए चाहती हूँ। अगर आप दुनिया में भी कामयाब इंसान बन के जीना चाहते हैं और आगे भी जाकर, तो फिर आप खतुल वसा अपने घरों में पुरसकून रहिए, और जहाँ जाकर काम करें, जिन लोगों से आपका वास्ता बढ़ना है, स्माइल, स्माइल इज अ सुन्ना, अस्सलाम वालेकुम, स्माइल, रिलैक्सेशन, खुश हो, मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, आज भी बहुत सारे लोग सुस्तियों के मारे पड़े हुए हैं, आज भी 98% लोग काम नहीं कर रहे कोई अच्छा, अल्लाह ने आपको मौका दिया। और यकीन कीजिए, जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है ना, अपने लिए कसूर लिख लीजिए अभी, जरूरी तो नहीं है कि उसने आपको तकलीफ देनी चाहिए फिर भी मिलेगी। हम कहते उसने मुझे देनी चाहिए, उसने मुझे जुलाया, वो मुझे जुलाने के लिए करती हैं, वो मुझे कुढ़ाने के लिए करती हैं, और ये सास तो मुझे यूं कहती है, और बहू तो ये जवान है ना, बन बन के दिखाती है। हर जिंदगी के पहलू में ये बातें लोग सोचते हैं, तो अपने लिए एक रूल लिखिए, मुझे तकलीफ पहुंची, जरूरी नहीं है कि अगले ने पहुंचानी चाहिए। देखिए ना, कोई छुरी निकाल कर लाकर आपको उसकी नोक चुबाता है, मानिए कि उसने आपको तकलीफ पहुंचानी चाहिए और आपको पहुंची, लेकिन एक तकलीफ आपको खुद नहीं पहुंच जाती जब प्याज काटते काटते आगे से उंगली का थोड़ा सा हिस्सा भी छिल जाता है? अब किसको कहेंगे, छुरी को कहेंगे? हाँ, ज्यादा ज्यादा ये कहेंगे, मियाँ आप छुरी इतनी तेज लाए कि मेरा हाथ कट गया। वो जैसे एक जोक है ना, हमारा पाकिस्तानी जोक ऐसे ही होते हैं कि बेगम मियाँ से नाराज है, या आप आटा कहाँ से लाए थे? वो अल्लाह का बंदा कहने लगा कि क्या हुआ आटे को? कहती इतना खराब आटा था, सारी रोटियां जल गई। तो अब बताइए, इस एटीट्यूड के सब फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस हो सकती है? हर खराबी आप मियाँ में ढूंढेंगी, और वो हर खराबी की वजह बेगम को बनाएंगे, तो घर बनेगा वो तो खड़ा है, और आप दीन के काम करते हुए उंगलियां उधर, ये इनका काम है, ये इनको करना चाहिए, ये इनको कहा था, ये इन्होंने किया नहीं, और अगर कोई दूसरा कर दे कहेंगे ये मेरे से का काम था, ले इन्होंने आज बारी मेरी ले ली। ये तलवारें सारी आपने तो अपने इर्द गिर्द चला ली, तो फिर वो जाहिदु फी सबीलिल्लाह ही कैसे होगा दूसरों से? लिखिए, सारी गोलियां घर में चलाने वाला बाहर जाकर क्या करेगा? ये मेरे वालिद मिसाल दिया करते थे, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। इधर जिंदगी का एक असूल बनाइए, अपने इर्द गिर्द सुकून लाइए, रिलैक्सेशन। ये जो कड़वी बातें, कड़वे जुमले, ताने मेने, और मैं ऐसी बहुओं को जानती हूँ जो अब खुद सासें क्या आगे दादियां, परदादियां, नानियां भी बन चुकी हैं, वो कहती हैं सास के वो जुमले नहीं दिमाग से जाते जो शादी के बाद से आज तक सुनती हैं। अच्छा, अब भी देती नहीं, अब कहाँ देंगी, अब तो वो किसी की तो होती नहीं है, और कोई बेचारी अब देने के काबिल, और कहती है अब वो देंगी तो मैं भी आगे से बोलती हूँ, इन्होंने मेरी जुबान खोल दी। कभी आपने ये जुमले बोले या सुने? ये अब भी नहीं कम, बात सासे बेचारी कुछ नहीं करती, बेचारी बेड रिडन है, बिलीव मी, और मैंने इस बहुओं के जुमले उनके लिए सुने, ये बिस्तर पे बैठी भी बड़ी चीज़ है ये क्या होती है भाई? नहीं, ये मेरे मियाँ को रात को थोड़ी देर इनके साथ के बैठ दें, बड़ा कुछ इशारों में समझाती हैं, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। और कुछ लोग कुरान पढ़े हुए, कुरान से जुड़े हुए लोग कहते हैं वो फलां ने तो पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ चिप लगाई हुई है, और मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया, और फलां मेरे खिलाफ है, और वो तो बस मेरा दिमाग पढ़ते हैं, और मेरे बच्चे बिगड़े हुए क्योंकि दादी बिगाड़ती है, दादी है ही नहीं, बस मेरे बच्चे बदतमीज है इसलिए कि नंद के बच्चे उसके बिगाड़ का जरिए हैं, और इसी तरह से कुछ और बातें। तो याद रखिएगा, ये बातें सोचने के बाद फिर सुलह नहीं होती, फिर फॉरगिवनेस नहीं होती, तो आपको कुछ ना कुछ यू हैव टू ओवरलुक, ये जो पार्डनिंग है ना, यू हैव टू ओवरलुक, आपको अपने बच्चे की बात पूरी समझ आ जाती है कि ये कर के आया गड़बड़, लेकिन यू हैव टू पार्डन, यू हैव टू दरगुजर, करना पड़ेगा। फिर एक और पॉइंट लिखिए, अपने नफ्स के लिए अच्छा होना, गुड फॉर वंस ओन सेल्फ। जी, आप दूसरे के सर पे एहसान नहीं चढ़ा रहे उसको माफी देकर, फॉरगिवनेस से। आप कहिए कि इससे मुझे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हल जजाउल एहसान ही इल्ल एहसान, एहसान का बदला एहसान पे आता है। कहते हैं कि अच्छा सलूक या बुरा सलूक वापस आता है, और हदीस तो मैंने पढ़ी क्या पढ़ाई भी है कि गाली देने वाला जब गाली देता है तो वो गाली जाती है उससे उसकी तरफ जिसको दी होती है। जिसको दी होती है अगर वो बंदा उस काबिल है कि जिसको गाली दी, तो उसको पड़ जाएगी, बददुआ कह लीजिए, गाली कह लीजिए, बदगोई कह लीजिए। लेकिन अगर वो शख्स उस काबिल नहीं है, यानी ही इज़ गुड, लेकिन आपने खामखा अपने ग्रज में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, तो वो गाली वहाँ से आती है वापस और आकर कहने वाले पे पलटती है। जी लिखिए ये जुमला। बाज़ुकात हम दूसरों को जो बददुआएं दे चुके होते हैं ना, वो एग्जैक्टली हमें पड़ती हैं बुरे हालात की सूरत में। इसको ऐसे सोचें जिस तरह इंग्लिश में एक लफ्ज़ लिख लीजिए, बाउंसिंग बैक। आप फुटबॉल या छोटी छोटी टेनिस बॉल से खेलते हैं, आप सामने दीवार पे क्लिक मारते हैं, क्या वो बॉल वहाँ खड़ा होकर चिपक जाता है? क्या उसी स्पीड से वो वापस आपकी तरफ नहीं आता? तो इंसानी मामलात में भी चीज़ें पलटती हैं। अब सवाल पैदा होता है, बात तो कर रहे हैं हम घर की और इर्द गिर्द वालों की और जो कुछ भी मामले हो रहे हैं उनकी, अब करें क्या? इतने बुरे, इतने खिलाफ, और कुछ को तो यकीन कामिल है कि सब मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप, मेरे फलां, और ससुराल तो बेचारा है ही इसराइल, और क्या है। तो लिखिए क्या करें? आपको यकीन है कि है कोई आपके खिलाफ, कोई करता है आपसे हसद, किसी को है आपसे बुगस। जैसे एक बहू की बात मुझे याद आ गई, कहती है कि मेरी सास को मैं अच्छी लगती ही नहीं, डे वन से नहीं लगती, हालांकि वो मेरी खाला भी हैं। मिसाल दे रही हूँ, खाला कह लें, फूफी कह लें, जबकि मेरी फलां यानी जो भी देवरानी है, जिठानी है, वो बड़ी प्यारी लगती है और वो तो आई भी गैरों से। क्या आपने कभी ये जुमले सुने लोगों से? मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकते कि खाला कैसी भी हो, खाला तो खाला ही है, खाला बात करे, खाला बात ना करे, खाला उस बात का कोई बुरा मनाए, खाला के लिए अल्लाह ने दिल में प्यार नहीं रखा। और फूफी, मुझे लगता है कि आपको खाला से प्यार होता है और फूफी को आपसे होता है। ये मेरा एक एनालिसिस है, वल्लाहु आलम, सारी खाला और फूफियों से माजरत के साथ, लेकिन ये सच है कि रिश्तों की अपनी मोहब्बत तो होती है। तो फिर आपकी भी खाला सास बनते ही इतनी जालिमा की हो गई और आपकी फूफी को आपसे बैर क्यों पड़ गया? और बाज़ ख़वातीन क्या कहती हैं, जो बदले मुझसे नहीं ले सकी ना, वो मेरी बेटी ले गई हैं और अब उससे ले रही हैं, कि तेरी अम्मा को तो सताया था ना, अब तुझे सता के उसको मजीद सताएंगे। मुझे बताइए इन बुनियादों पे क्या तामीर होगी? तो फिर लिखिए सूरत तगाबुन आयत नंबर 14, वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अगर माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श भी दो, तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। ये है जी वो खूबसूरत आयत जो सूरत तगाबुन में तो शौहर बीवी और बच्चों के मामलात के बाद आई, यानी बीवियों और बच्चों को दुश्मन कहा गया कि जो तुम्हारा दीन बेच दें और तुम्हें अल्लाह से दूर करें, तो उनको भी नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ ये आयत बिल्कुल जनरल आयत है, तीन लफ्ज़ हैं डिक्शनरी में जो मुआफ़ी को पेश करते हैं, तीनों लफ्ज़ कुरान की इस आयत में। आप किसी जगह क्विज़ में ये सवाल भी डाल दीजिएगा, बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि वो कुरान की कौन सी आयत है जिसमें मुआफ़ी से मुतल्लिक हर चीज़ है। तो आइए ज़रा मैं आपको इन तीनों की खूबसूरती दिखाऊं और फिर आप देखें कि इस कुरान को मज़ीद सीखने की क्या ज़रूरत है। ये जो पार्ट है ना जो अब करने लगी हुई है, हमारी आयत बाय तफसीर का एक स्टाइल है। तो अब देखिए पहला लफ्ज़ है ताफू, आइन फा वाओ, इसका रूट है अफ, किसी चीज़ को लेना, यानी किसी चीज़ को लेने का इरादा करना। और कुरान पाक में ये आयत अगर आप देखें तो आपको इतनी कसरत से मिलती है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। जो मैं अभी कहने लगी ना, इसको आप कह लीजिए लुगवी तफसीर है, और ये जो आयत बाय तफसीर है इसका बिग पोर्शन लुगवी तफसीर है। सबीलुल जन्ना में आपको ओवरऑल हिस्सा दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल बाद भी आज भी जब कोई नया कोर्स होता है कहते हैं वो कॉम्पैक्ट है और उसका असर बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको थोड़े से वक्त में देना होता है, 2-2.5 साल कुछ ज़्यादा नहीं होते, उसमें आपको पूरा कुरान देना है, तो एक ही कॉन्सेप्ट तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त हम ये कर रहे हैं आयत बाय तफसीर, तो इसमें चूंकि हर आयत को अंदर से देखना है ना, तो इसका हक है, ये ज़रूरत है इस बात की कि आपको हर लफ्ज़ समझ आए। तो आप देखते हैं कि लफ्ज़ अफ़वन, जिससे ये लफ्ज़ है मुआफ़ी, अगर आप इसको कुरान पाक में ढूंढें तो आपको पता है कितनी दफ़ा आता है। और चले थोड़ा सा मज़ीद सोच करीब लाने के लिए बोल रही हूँ, आपने 10 रातें जिसमें से आपके गुमान और हमारा ईमान भी है कि एक रात लैलतुल कदर की थी, यही दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्ना कफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ुअन्नी। और मज़ीद कुछ फ़ायदा देना चाहो तो फ़ाफ़ुअन्नी 3 रोज़ा कोर्स है, जो हुआ तो पिछले सालों में से 1 साल में जोहराबाद में हुआ था, लेकिन इस साल रमज़ान के बाद बहुत जगह गया। अफ़्वन क्या होता है? 31 टाइम ये लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। सुम्मा फ़ाउनानकुम, और फाफू वस्फहू फमन उफिया लहू, और इसी तरह एक डिटेल्ड है इसके बारे में, ये क्या लफ्ज़ है। आप देखिए कि मुहावरतन अरब लोग जब किसी चीज़ को उसके हाल पे छोड़ना चाहते हैं ना, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बस आप देखिए कि कुरान पाक की एक आयत जो आपके सामने भी यहाँ रखी गई, हुजिल अफवा वामुर बिल उर्फी वारिदनिल जाहिलीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम तो नहीं है लेकिन खिताब उन्हीं से है, और आज आपसे मुझसे अफ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। इससे खूबसूरत नसीहत किसी को नहीं की जा सकती, दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए या फॉरगिव एंड फॉरगेट के लिए। क्या पता चला कि वो लोग जो आपकी बात ना तो सुनने को तैयार थे ना सुनवाने को तैयार थे, आप उनसे भी दरगुजर इख्तियार कीजिए, और जो नेकियों का हुक्म दे रहे हैं देते रहें, लोगों के मुंह ना देखा करें नेकियों के काम करते हुए, क्योंकि लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे। एक जुमला आज अपने साइड पॉकेट में लिखिए, जो हमेशा ही कहती हूँ हर लेक्चर के साथ, एक कोने पे जेम्स लिखा करें, और वो जुमला कह के आप सारी दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। हमारे किसी को मुआफ़ ना कर देने की वजह अमूमन ये होती है कि फ़ला मुझसे खुश नहीं होता, मैंने ये भी किया वो भी किया वो मुझसे खुश नहीं हुए। ठीक है, तो लफ्ज़ अफ में क्या है? बुसीदगी, पुराना होना। एज इट इज़ छोड़ दो, यानी मामले को इधर ही छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ। दाढ़ी के बारे में हदीस में लफ्ज़ आता है, दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दो, मुराद ये कि उसकी काट छांट ना करो तो ये आला तरीन दर्जा होगा। अब जब ये अफ के मानों में आता है ना, तो फिर समझिए जो इस वक्त मौजूद, वरना इसके डिक्शनरी मानी बहुत से हैं जो मैं सब स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त ये तफसीर की क्लास नहीं है, ये एक जनरल हमारा तरबियती सेशन है। तो मुआफ़ी क्या है? अल्लाह ने आपका अमालनामा खोला ही नहीं है, बस छोड़ दो। जैसे कभी कभी होते हैं ना पासपोर्ट चेक करने वाले, बस खोला और जाओ, कभी पूछने लग जाएंगे किधर गए, कहाँ गए, ये कहाँ का सफ़र था, इधर क्या था। तो इंसानी मामलात में ऐसे ही, टैक्स पेपर देखिए, साल की रिटर्न ने जाती आती, हर एक के अपने समझने के मिसालें हैं, इसलिए हर एक को टच कर देती हूँ कि लोगों को बात अपनी लगे। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में हम एज़ इट इज़ पे जाते हैं। कौन सा शौहर है जो पूरे महीने के बाद आपसे एक एक आना पाई का हिसाब मांगे कि जो बेगम मैंने आपको ग्रोसरी के लिए 1,000 दिया तो वो किधर गया? नहीं करते ना, ये अफ है, जाने दो। और ज़िंदगी का असूल लिखिए इंसानी रिश्तों में और इंसानी मामलात में, अगर आप इस असूल पे जी रहे हैं ना, आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे, मुतमईन होंगे। बच्चों को अफ दरगुजर कीजिए, खताएं जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, गलतियों को पीछे करें, सरफे नज़र कीजिए, और जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उसको भी अफ कहते हैं, कुलिल अफ। सवाल था कि अब क्या खर्च करेगा, सब कुछ खर्च कर दो जो तुम्हारी ज़रूरत से बढ़कर है। ठीक है, तो ये कैफियत का नाम है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ आता है, इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा, तो इससे क्या मुराद है? अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह की ज़ात के साथ जब ये लफ्ज़ आता है ना, तो इसमें एक मानी का समंदर है। इसीलिए अल्लाह के नबी की दुआ में था, अस्सलुका लफ़ वल आफिया, सुबह शाम की दुआ में आप पढ़ते हैं। तो जब अल्लाह ताला अपनी ज़ात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मुराद क्या होता है? सदका कर दिया। देखिए अरब लोग कहते हैं, और एक हदीस में भी है, माँ अकलतिल अफ़ियतु फहुवा सदका, जो खेती में से चर चुग गए, परिंदे चुड़िंदे इंसान भी खाते हैं ना, वो किसान की तरफ से सदका है। अल्लाह ताला बंदे से अफ करे तो ये बंदे पे अल्लाह का सदका है कि तुम काबिल तो नहीं थे, लेकिन मैं तुम पे सदका करता हूँ तुम्हारी बख्शिश को। बात समझ आए तो आ जाए, ना आए तो छोड़ दीजिए। उफुल लिहा, दाढ़ी के बालों को छोड़ दो। अल्लाह अकबर, कभी कभी खाने में से बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, तो आखिर में एक शोरबा बचता है, उसको भी अल मुआफ़ी कहते हैं अरबी में। अरब लोग शोरबे को माफ़ी कहते हैं, क्योंकि बोटियां तो खा ली, पीछे माफ़ी बच गई, ये कह लीजिए। इसी तरह और बहुत है, ऊन या परिंदों के पर जो भर जाएं। इसी तरह किसी का बर्तन उधार मांगने के लिए भी अरब लोग यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी देगे मुस्तार। चलिए इसको तो अब छोड़ दीजिए, तोफ क्या समझ आई? हुज़े लव एज इट इज़, छोड़ दो, बहस ना करो। और ज़िंदगी का असूल लिखिए, फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके मैं चंद जुमले बोलती हूँ हमारे कल्चर को सामने रखते हुए। जिरा ना करो, मिट्टी पाओ, जाने दो बेगम। अच्छा आप इतनी बात ना खेंचा करें, साथ रहने लगे। ओके सिस्टर, इट्स ओके, ओके ओके, लीव इट, इट्स ओके, फाइन, डोंट टच दिस, ये है अफ, इसको छोड़ दीजिए, बात समझ गया। और अगर आप जिरा करने वाले हैं, चीख 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 चीख, कुछ लोग इतने वो क्या कहते हैं, चीकी और पिकी और लीचड़ किस्म के होते हैं कि दिल नहीं करता उनसे बात करो, पीछे ही पड़ जाएंगे। फिर 6 माह बाद मिलेंगे ना, या आप बात करें, बात वहीं से शुरू करेंगे, वो आपने क्यों कहा था जी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लीचड़ नहीं बने, इट्स ओके। बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक करते हैं ना, तो खाना पकाते हैं और खाते हैं, जो बंदा पुलाव में से जीरे भी निकाल ले, उसके अंदर से लौंग भी निकाल ले, और उसमें से पता नहीं क्या निकाले, वो पुलाव का मज़ा ले सकता है? तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है उन लोगों का जो बाल की खाल निकालते हैं। तो अफ के साथ कोड वर्ड या मुहावरा लिख लिए, बाल की खाल मत निकालो।